नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
मैंने अपना मन को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन काली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 49 से अपने अध्ययन को आरंभ करें। लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है पिताजी कि आप हम सबकी सहायता करें, हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हमें समझाने, सिखाने और सुधारने पाए। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। जो बीमार हैं, चिंतित हैं, निराश हैं, परेशान हैं, प्रत्येक की आप सुधी लें। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 49 में देखेंगे, जिसका विषय है धन संपत्ता का घमंड करने वालों का अंत। भजन संहिता 49 भजन संग्रह के निर्गमन भाग का अंतिम भजन है। हमने दुष्ट जन और धर्मी जन के संबंध में परमेश्वर के बदले को देखा था। हमने यह भी देखा था कि परमेश्वर अपने प्रजा को, जो उससे दूर और स्वदेश से बाहर थी, उसे लेकर चलता है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अपने पास लाने और महाक्लेश के समय उनको सुरक्षित रखने की अपनी इच्छा प्रकट की है। यह वैसे ही है जैसे मिस्र के निरंकुश शासक से उनकी मुक्ति थी। भजन 49 का प्रारूप इस प्रकार से रचा गया है कि दुष्ट और धर्मी के साथ परमेश्वर के व्यवहारों में अंतर देखा जाए। यह भजन धन की अनिश्चितता, जीवन की लघुता का ही नहीं, संकट और कष्टों का बहादुरी से सामना करने का उपदेश ही नहीं, सदाचार का ही प्रतिफल है इसका निबंध ही नहीं, न्याय की विजय होगी का विचार ही नहीं प्रदान करता, वरन धन की व्यर्थता और धन का घमंड करने वालों का अंत भी बताता है। आज की मानसिकता की तुलना में यह भजन क्रांतिकारी प्रतीत होता है, परंतु हमारे युग में इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तो आइए हम भजन संहिता 49 उसके 1-4 पद को पढ़ें। लिखा हुआ है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ, क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। डॉक्टर गबलिन का अनुवाद इस प्रकार से है, सुनो हे सब लोगों कान लगाकर सुनो, सब निवासियों बड़े छोटे सब गरीब अमीर सब एक साथ सुनो। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलती है और मेरे मन के विचार बुद्धि के हैं। मैं एक दृष्टांत पर ध्यान दूंगा, मैं वीणा बजा बजा कर अपनी गुप्त बात सुनाऊंगा। इस भजन में भजनकार क्या कह रहा है और अगले भजन में भी वह क्या कहेगा? वह परमेश्वर की सृष्टि को पुकारता है कि वे सुने। हम यशाया की अध्ययन में अध्याय 1 में भी इसी बात को देखेंगे। व्यवस्था विवरण के पुस्तक के अध्ययन में तो हम ये सब कुछ देख चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को प्रतिज्ञा के देश में रखा, तब उसने स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह बनाकर कहा था कि वह अपनी प्रजा को प्रतिज्ञा का देश ही नहीं वरन उसमें वास करने की शर्त भी दे रहा है। उसने एक भजन रूप में कहा था, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय उसके 1 पद में, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। यह मूसा के गीत का आरंभ है। इस गीत में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर इसराइल द्वारा प्रतिज्ञा के देश में वास करने की शर्त रखता है। 800 वर्ष बाद परमेश्वर उन्हें उस देश से बाहर निकाल रहा था क्योंकि उनका पाप बढ़ गया था। यशाया की पुस्तक में फिर से परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर कहता है कि उन्हें देश से निकाल देना उचित और न्याय सम्मत है। यशाया नबी की पुस्तक 1 अध्याय के 2 पद में हम इसे पाते हैं। अब यहाँ परमेश्वर पुकारता है कि आप कुछ सुने, परंतु यह सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। यह एक प्रश्न से आरंभ होता है। भजन संहिता 49 के 5 पद में लिखा है, विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? मेरे मित्रों, आप सोचेंगे कि यह प्रश्न किसने पूछा है? क्या यह भजनकार का प्रश्न है? क्या यह एक आत्मविश्वासी धनवान व्यक्ति का प्रश्न है? शायद यह प्रश्न दुष्ट के हाथों सताए जाने वाले धर्मी जन का है या आज के आवश्यकता ग्रस्त मनुष्यों का प्रश्न है। मैं तो यह मानता हूं कि यह एक गरीब मनुष्य का प्रश्न है। मैं एक गरीब बालक था और स्वीकार करता हूं कि मैं धनवानों पर संदेह की दृष्टि ही डालता था। मैं उनकी मंशाओं पर संदेह करता था। परमेश्वर किसी को धनवान क्यों बना देता है? उनका क्या होगा? वे इतना सब कुछ रखकर कैसे बचे रहते हैं और अन्यों की नाई कष्ट क्यों नहीं उठाते? अब प्रश्न यह है कि परमेश्वर उन्हें क्यों छोड़ देता है? वह उनके विरोध कुछ करता क्यों नहीं है? आइए हम देखें कि इस विषय में यह भजन हमें क्या कहता है। भजन संहिता 49 उसके 6-7 पद में लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, वह उद्धार को खरीद नहीं सकता। वह और मैं दोनों ही उद्धार के लिए मेज पर जाते हैं। मेरे पास तो उधार खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। धनवान मनुष्य के पास पैसा है, परंतु वह उधार खरीद नहीं सकता। हम दोनों यहाँ बराबर ही हैं। धनवान मनुष्य उधार से वंचित रह जाता है यदि उसे यह भ्रम हो कि वह उधार पाने के लिए पैसा दे सकता है या कुछ कर सकता है या कुछ बदले में दे सकता है। रोमियो की पत्री अध्याय 4:5 में लिखा है कि वह जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धर्मी ठहराया जाता है। भजन संहिता 49 उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। मेरे प्रियो, उनके पास उधार खरीदने के लिए पैसा नहीं है। उधार खरीदने के लिए तो किसी के पास भी कुछ नहीं है। कुछ समय पहले मैंने किसी व्यक्ति को बातें करते हुए सुना था। कि हमें शांति चाहिए, लेकिन हम पैसा दे करके उसे नहीं प्राप्त कर सकते, और यही बात हमारे लिए उद्धार के लिए है। भजन संहिता 49 उसके 9 पद में लिखा है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। जी हाँ, धनवान जन भी वैसे ही मरेंगे जैसे एक साधारण मनुष्य मरता है। मेरे विचार में इस भजन के आधार पर ही प्रभु यीशु ने धनवान मनुष्य और लाजर का दृष्टांत सुनाया था, जिसे हम लूकार्थी सुसमाचार 16 अध्याय उसके 19 से 31 पद में पढ़ते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी धनवान हो, न तो अपनी आत्मा और न ही किसी की आत्मा का उद्धार वह करा सकता है कि अनंत जीवन पाए। भजन संहिता 49 उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। आप क्या हैं और आपका धन कितना है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। एक दिन आप मर जाएंगे और यह सब आप पीछे छोड़कर चले जाएंगे। आप अपनी धन संपत्ति बैंक में लॉकर में रखें या भूमि में गाड़ दें या कहीं भी आप उसे छुपा लें, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। आपने सही कहा, आपसे उसे कोई भी नहीं छीन सकता, परंतु कोई है जो आपको उससे अलग कर सकता है, वह है प्रभु। एक दिन मृत्यु आपके द्वार पर दस्तक देगी। उस समय किसी भी गरीब के सदृश होंगे, जैसा कि एक प्राचीन कहावत है, कफन में जेब नहीं होती। जी हाँ, वर्षों पूर्व एक अभिनेता की मृत्यु हुई। उसके लालची संबंधी बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। उसका वकील जब बाहर आया तो उन्होंने पूछा, उसने कितना पैसा छोड़ा है। वकील ने उत्तर दिया, वह सब छोड़ गया है, वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया था। भजनकार ने सबसे पहली खोज यही की थी कि धनवान अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। मेरे मित्र, आप इस पृथ्वी पर धनवान होंगे, परंतु न तो आप अपना उद्धार खरीद सकते हैं और न ही अपने पार्थिव जीवन को अनंत काल तक खींच सकते हैं। एक दिन आपको जाना ही होगा और अपनी संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। यही कारण है कि हम मनुष्य से आग्रह करते हैं कि वे अपनी जमा पूंजी मसीही सेवा में दे दें, कि परमेश्वर का वचन प्रसारित होकर भूखे हृदयों तक पहुंचे, ताकि वे भी उद्धार को प्राप्त करें। यही तो अति महत्वपूर्ण बात है। भजन संहिता 49 के 11 पद में लिखा है, वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपने अपने भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। अनेक लोग अपने नाम को जीवित रखना चाहते हैं। मेरे विचार में रॉकफेलर का नाम संपूर्ण संसार की इमारतों पर है। लोग कहते हैं, ओह, वास्तव में यह दानी मनुष्य था। एक प्रकार से कहें तो यह एक तुच्छ विज्ञापन है। मैं तो कभी इतना पैसा नहीं दे पाया कि मेरा नाम संगमरमर की इमारतों पर लिखा जाए, और मैं चाहता भी नहीं। कहने का अर्थ यह है कि किसी इमारत पर नाम लिखवा देना अर्थ नहीं रखता। एक दिन इमारतें गिर जाएंगी और मनुष्य को मनुष्य भूल जाएगा। भजन संहिता 49 उसके 12 पद में लिखा हुआ है, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। जी हाँ, पद प्रतिष्ठावान मनुष्य अन्य किसी भी मनुष्य के समान मर कर मिट्टी में मिल जाएंगे। भजन संहिता 49 के 13 पद में लिखा है, उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। यह अभिव्यक्ति अति रोचक है। भजन संहिता 49 के 14 पद में लिखा है, वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गड़ेरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। यहाँ अधोलोक का अर्थ है मृतकों की दुनिया। धनवान मनुष्य भेड़ के समान मृत्यु लोक में होगा। मूल में इसका अर्थ है मृत्यु उनका चरवाहा है, जो दाऊद की गवाही के विपरीत है, यहोवा मेरा चरवाहा है, जिसे हम भजन संहिता 23 उसके 1 पद में पढ़ते हैं। और तब हम पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में देखते हैं, प्रभु यीशु को जीवन कहा गया है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जी हाँ, मृत्यु झूठा चरवाहा है और मृत्यु उन पर पल्लवित होगी। यह एक रोचक बात है। चरवाहा तो अपने भेड़ को चराता है, परंतु यहाँ एक चरवाहा है जो अपने भेड़ों को ही खा रहा है। यह भी कहा गया है कि उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। मनुष्य सौंदर्य कक्ष में अपना धन लुटा दे, हर प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन काम में ले, परंतु कुछ समय बाद वे कब्र में कैसे दिखेंगे? वह एक आकर्षक दृश्य नहीं होगा। जी हाँ, मैंने ऐसे अनेक जन को देखे हैं जो मृत्यु की पुकार से घबराते हैं। मृत्यु किसी भी पुकार से सुंदर नहीं है। भजन संहिता 49 उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। सेला अर्थात रुक कर सोचे कि क्या पढ़ा है। केवल परमेश्वर ही है जो आपकी आत्मा को उधार दिला सकता है। इस जीवन में महत्वपूर्ण बात धन या दरिद्रता नहीं है। अंतिम विश्लेषण में जब आप अनंत समय में प्रवेश करेंगे, तब महत्वपूर्ण बात होगी कि आपका उद्धार हो गया है या नहीं, आप प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा परमेश्वर की संतान हैं या नहीं। भजन संहिता 49 के 16 पद में हम पढ़ते हैं, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय ना खाना। आज धनवान मनुष्य हत्या और व्यभिचार करके या कुछ भी करके बच जाते हैं और गरीबों का न्याय किया जाता है। मैं यीशु को सराहता हूँ क्योंकि वह धार्मिकता से गरीबों का न्याय करेगा। मैं जानता हूँ कि एक दिन मुझे भी न्याय मिलेगा। भजन संहिता 49 उसके 17 से 20 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ ना ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। मेरे मित्रों, यह एक रोचक अंश है। हमें आज विकासवाद के समर्थक देखने को मिलते हैं कि मनुष्य बंदर से आया है, परंतु सच तो यह है कि बाइबल इसकी विपरीत शिक्षा हमें देती है। परमेश्वर ने मनुष्य को उचित रूप में अर्थात अपने स्वरूप में रचा था। मनुष्य गिर गया और परमेश्वर से इतना दूर हो गया कि वह पशु स्वरूप हो गया, और मरकर वह एक पशु के तुल्य हो जाता है। और तब मनुष्य का विकास नहीं विनाश होता है, वह ऊपर नहीं उठ रहा है, उसकी मानसिकता नीचे गिरने की है। यह जीवन के किसी भी परिप्रेक्ष्य में स्वाभाविक ही है। मेरे विचार में मनुष्य की हर बात विकास के विपरीत है। अपने आप तो कुछ भी ऊपर की ओर उन्नतिशील नहीं है, सब कुछ नीचे की ओर खींचा जा रहा है। नैतिकता का भी एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो अनैतिकता है, और वह मनुष्य को नीचे की ओर खींचता है। मेरे मित्रों, हमें दुष्टों को फलता देखकर चिंतित नहीं होना है। यहाँ पर भजन संहिता 49 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं भजन संहिता 50 में, जिसका विषय है न्याय का भजन। यह आसाप का पहला भजन है। वह मंदिर के 3 गायक अगुओं में से एक संगीतकार था, हेमान, आसाप और एतान। यह न्याय का एक महान भजन है। इसमें परमेश्वर की प्रजा और दुष्टों के न्याय के निमित्त परमेश्वर के आगमन की चर्चा है। तो आइए हम भजन संहिता 50 उसके 1 से 3 पद को पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। इस भजन की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ रहा है। परमेश्वर की संतान के लिए यह कैसी महिमामय आशा है। एक दिन हम अपने प्रभु को देखेंगे, प्रत्येक विश्वासी की यही एक आशा है। भजन संहिता 50 के 4 पद में हम पढ़ते हैं, वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। परमेश्वर अपने न्याय के समय बहुत साक्षियों की उपस्थिति चाहता है कि वे सुनिश्चित करें कि वह अपने हर एक काम में न्याय संगत है। वह कहता है भजन संहिता 50 के 5 पद में, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। जी हाँ, परमेश्वर के साथ बलि चढ़ाकर वाचा बांधने वाले पवित्र जन यहूदी हैं, इसराइल के वंशज हैं। भजन संहिता 50 के 6 में आगे लिखा है, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। प्रभु यीशु मसीह न्यायी होगा। पहला योहना के पत्र 5 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। भजन संहिता 50 के 7 में लिखा है, हे मेरी प्रजा सुन मैं बोलता हूँ और हे इसराइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। यदि आप उस समय यरूशलेम में होते जब मंदिर में उपासक आते थे तो आप शायद पूछते, हे परमेश्वर क्या तू इन लोगों की आलोचना कर रहा है, वे तो नियमित रूप से मंदिर आते हैं। यह ऐसा था जैसे हर रविवार की आराधना में आना और प्रार्थना सभाओं में जाना है। वे तो मंदिर की सेवा में दीमकों की नाई सक्रिय थे। आप जानते हैं दीमक जो द्वारों को और घरों को नाश कर देते हैं, निश्चय ही वे थे। परंतु आराधना में जाना ही सब कुछ नहीं है, निसंदेह यह महत्वपूर्ण है, परंतु इससे परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित नहीं हो जाता। आपके लिए उचित होगा कि आप मसीह के द्वारा परमेश्वर से संबंध बनाएं, कि आपका आराधना करना परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। भजन संहिता 50 उसके 8 से 10 पद में लिखा है, मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। परमेश्वर कहता है, तुम बलि चढ़ाकर क्या इस भ्रम में थे कि तुमने मुझे कुछ दिया है, क्यों सब पशु तो मेरे ही हैं। इससे मुझे यर्मिया भविष्यद्वक्ता की बात स्मरण आती है। यर्मिया के पुस्तक 7 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा नहीं दी थी, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी थी कि मेरे वचन को मानो। जब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। भविष्यद्वक्ता मीका ने भी ऐसा ही कहा था, जिसे हम मीका की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 से 8 पद में पढ़ते हैं, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं, क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं, क्या यहोवा हजारों भेड़ों में से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं। हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। भजन संहिता 50 के 12 में लिखा है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। यदि सृजनहार भूखा हो तो वह अपनी सृष्टि से क्यों कहेगा। भजन संहिता 50 के 15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर अपने भक्तों को बुलाता है परंतु दुष्टों का न्याय करेगा। वह कहता है, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें पाप में छोड़ दूं। भजन संहिता 50 उसके 21 और 22 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यह काम तूने किया और चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर केवल इसराइल ही से नहीं कहता, वह आज हमसे भी यही कहता है। परमेश्वर के चुप रहने का अर्थ नहीं कि वह स्वांग को स्वीकार करता है, वह तो स्वांग घमंड का पर्दा उठाता है। लेखा लेने का दिन आता है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर अनुग्रह प्रदर्शन से कभी नहीं चूकता है, उद्धार का मार्ग हमें दिखाया गया है। भजन संहिता 50 के 23 पद में लिखा हुआ है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है अर्थात जो परमेश्वर के समक्ष पाप स्वीकार करता है, उसे उद्धार का मार्ग दिखाया जाएगा। मेरे मित्र, मैं नहीं जानता कि आपका चरित्र क्या है, मैं नहीं जानता है कि आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं या नहीं। हो सकता है कि आपका जीवन इस समय पाप में लिप्त है। आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र और कलीसिया के लोग, पड़ोस के लोग नहीं जानते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर उसे जानता है और वह उसे अलग अलग करके आपको दिखाएगा। इससे पहले कि भयानक दिन आ जाए, आज इस वचन के आधार पर अपने आप को प्रभु की निकटता में लाएं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें और कहें, प्रभु मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूं। जी हाँ, क्योंकि वह चाहता है कि वह आपके चरित्र में दाग को न देखे। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज आप एक सही निर्णय लेंगे और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुमसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जी